ईप्सिता अपनी कार से ये सब बोल रही थी, तभी वहां एक आदमी आया। उसने साधारण जीन्स और सफेद शर्ट पहन रखी थी। शर्ट की बाहें ऊपर तक चढ़ी हुई थीं। उसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काले चश्मे लगा रखे थे। वो ईप्सिता के पास आकर तेज आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी मिस, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या आपकी कार में? आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ईप्सिता ने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और बोली, लेकिन आप कौन हैं? उस अनजान आदमी ने ईप्सिता के सवाल को अनसुना करते हुए कहा, हमने देखा कि आप यहाँ अपनी कार रोककर खड़ी हैं और थोड़ी परेशान लग रही हैं। आपकी कार में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ईप्सिता ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं हमारी कार को क्या हो गया है, अचानक से चलते चलते रुक रही है। उस आदमी ने सीधे कहा, आपको कहाँ जाना है? आइए हम आपको छोड़ देते हैं। ईप्सिता उस आदमी को घूरने लगी। उस आदमी ने काले रंग का मास्क और काले रंग के ही सनग्लासेस पहने हुए थे। वो खुद ही ईप्सिता से बात करने आया था। ईप्सिता ने उसे सिर से पांव तक देखा और मन ही मन सोचा, ये है कौन और इस तरह से बिना मांगे ही हमारी मदद के लिए क्यों आ रहा है? और कॉन्फिडेंस तो देखो, सीधे ही अपने साथ आने के लिए बोल रहा है। ईप्सिता उस आदमी को घूरते हुए देख रही थी। ईप्सिता को ऐसे देखकर उस अनजान आदमी ने कहा, आप इतना क्या सोच रही हैं? लिफ्ट देने की बात की है हमने आपसे, आपकी किडनी नहीं मांगी। ईप्सिता ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोली, नो थैंक्स, हमें आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर ईप्सिता ने कार से अपना पर्स निकाला, कार लॉक की और बेकरी की ओर देखते हुए बोली, पता नहीं कौन है ये आदमी, बेवजह ही बात करने के मौके ढूंढ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ी ही दूर पर तो बेकरी है, यहाँ से पैदल चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपना मोबाइल चार्ज कर लेंगे, फिर किसी कैब को बुक करके घर चले जाएंगे। इस तरह यहाँ अकेले रास्ते में खड़े होना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पता नहीं इसके जैसे और कितने लफंगे आ जाएं। इतना बोलकर ईप्सिता सीधे उस बेकरी की ओर जाने लगी। जाते जाते ईप्सिता ने एक बार पलटकर उस आदमी को देखा। वो अभी भी ईप्सिता की कार के पास ही खड़ा था। ईप्सिता जैसे ही उस बेकरी में पहुंची, बेकरी के ओनर ने ईप्सिता को देखते हुए कहा, वेलकम मैम, द रॉयल्स बेकरी में आपका स्वागत है, बताइए क्या लेंगी आप? ईप्सिता ने सामने शोकेस में लगे सारे केक की ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली हमें तो बस पाइनएप्पल फ्लेवर का एक केक चाहिए। उस बेकरी के मैनेजर ने वहीं बेकरी शॉप में काम करने वाले एक लड़के की ओर देखते हुए कहा, छोटू मैम का एक पाइनएप्पल फ्लेवर केक पैक करो। उस ओनर ने ईप्सिता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, एनीथिंग एल्स मैम? ईप्सिता ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, वो हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, क्या इसे आप 5 मिनट के लिए चार्जिंग पर लगा सकते हैं? उस मैनेजर ने कहा, यस ज़रूर, वाई नॉट मैम। इतना बोलकर उसने ईप्सिता का फ़ोन लिया और फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर बोला, आप थोड़ी देर वेट करिए मैम, जब तक आपका केक पैक हो रहा है इतनी देर में आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। ईप्सिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर ईप्सिता वहीं बैठ गई और उस बेकरी का मैनेजर अपने काम में व्यस्त हो गया। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी आज की मैगजीन बुक के कवर पर पड़ी। उसने जैसे ही ईप्सिता की फ़ोटो कवर पर देखी, वो उसे पहचान गया। उसने तुरंत पीछे पलटकर ईप्सिता को देखा, मैगजीन उठाई और ईप्सिता के पास आकर बोला, मैम इज़ दैट यू? ईप्सिता ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस yes? उसने कहा, आप मॉडल हैं, मुझे नहीं पता था कि आप जैसे इतनी बड़ी और फेमस मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वाली मॉडल भी मेरी बेकरी में आ सकती है। ईप्सिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मॉडल तो हम अभी कुछ महीने पहले ही बनी है, बट आपकी बेकरी से तो हम हमेशा ही सामान खरीदते आए हैं अंकल। ईप्सिता ने जैसे ही ये बात कही, वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसने वहां काम कर रहे लड़के की ओर देखते हुए कहा, छोटू मैम के लिए एक डाइट कोक लेकर आओ। ईप्सिता ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं रहने दीजिए, हम कोक नहीं पीते हैं। ईप्सिता की बात सुनकर वो मैनेजर बोला, अच्छा ठीक है, कोक नहीं तो हमारी बेकरी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्कशेक ट्राई कर लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है, या फिर कोल्ड कॉफ़ी, हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। ईप्सिता उनसे मना कर ही रही थी कि तभी वही मास्क और सनग्लास वाला आदमी उस बेकरी के अंदर आया। ईप्सिता मैनेजर से बात कर रही थी तभी उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर पड़ी और उसने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, आई थिंक हमारा फ़ोन चार्ज हो गया है, थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ केक पैक कर दीजिए, हमें घर जाना है। थोड़ी ही देर में ईप्सिता का केक पैक होकर उसके पास आ गया और उस मैनेजर ने पूछा, ओके मैम आप पेमेंट कैश करेंगी या कार्ड? ईप्सिता ने कहा, कार्ड। इतना बोलकर उसने पर्स से कार्ड निकाला और अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन पेमेंट फेल हो गया। ईप्सिता ये देखकर बोली, क्या हो रहा है, हमारा कार्ड तो कभी ऐसा नहीं करता। इतना बोलकर ईप्सिता ने दोबारा अपना कार्ड स्वाइप किया और हैरानी से कार्ड की ओर देखने लगी। तभी वो मास्क और सनग्लासेस पहने हुए आदमी उसके पास आते हुए बोला, कितना पेमेंट है बताइए, हम पे कर देते हैं। जैसे ही ईप्सिता ने उस आदमी को देखा, ईप्सिता उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? इप्सिता ने बिना किसी डर के तुरंत बिल्कुल सीधे तौर पर उस आदमी से ये बात पूछ ली। तभी उस आदमी ने आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप, हम भला आपका पीछा क्यों करेंगे, और हम तो यहाँ पर अपना भी कुछ सामान लेने के लिए आए हैं। भैया, दो पुडिंग पैक कर दीजिए और एक ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। इप्सिता उस आदमी को घूरते हुए देखने लगी, क्योंकि उसे उस आदमी की बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। इप्सिता ने उसे मना किया और अपने पर्स से कैश निकाला और पेमेंट कर दिया। इप्सिता अपना केक उठाकर वहां से जा ही रही थी कि तभी इप्सिता की नजर उस आदमी के साइड फेस पर गई। इप्सिता उसे हैरानी से देखते हुए बोली, ये है कौन, और हो ना हो ये हमारा पीछा ही कर रहा है, वरना इस तरह पहले वहां कार के पास हमारी मदद करने के लिए रुकना और फिर उसके बाद बेकरी में आना, ये दोनों ही चीजें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती, जरूर ये हमारा पीछा ही कर रहा है। लेकिन ये है कौन और हमें ये इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? इप्सिता वहीं रुककर उस आदमी को घूरते हुए देख रही थी, और वो आदमी बेकरी से अपना सामान लेने में व्यस्त था। उसने ध्यान नहीं दिया कि इप्सिता अभी भी वहीं पर खड़ी होकर उसे घूरते हुए देख रही है। जैसे ही इप्सिता ने उस आदमी की ऊंचाई और बनावट को देखा, उसने धीमी आवाज में कहा, ये आदमी हमें अभिमन्यु की पर्सनैलिटी का क्यों लग रहा है? अभिमन्यु? वो यहाँ मुंबई में कैसे हो सकते हैं? वो तो उदयपुर में होंगे ना, हम भी क्या बेकार लोगों के बारे में सोच रहे हैं? इप्सिता इतना बोलकर वहां से जाने लगी थी। तभी इप्सिता ने फिर से पलटकर उस आदमी की ओर देखा और इप्सिता को उस पर शक हो रहा था। तभी इप्सिता धीरे से पीछे पलटी और वो उस आदमी के पीछे जाकर खड़ी हुई। उसने देखा उसकी एकदम सही ऊंचाई अभिमन्यु की जितनी ही थी। इप्सिता ने मन में कहा, पर्सनैलिटी तो बिल्कुल अभिमन्यु जैसी ही लग रही है, हमने इन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं किया? इप्सिता अपने मन में ये बात बोल रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। वो मान ही नहीं रही थी कि अभिमन्यु यहाँ पर हो भी सकता है। तभी इप्सिता ने धीमी आवाज में अभिमन्यु का नाम पुकारा। अभिमन्यु? सामने खड़ा वो आदमी तुरंत हाँ भरते हुए बोला, हाँ बोलिए इप्सिता। जैसे ही उसने उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुना, इप्सिता का शक तुरंत यकीन में बदल गया। इप्सिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने अपने चेहरे से मास्क और सनग्लासेस उतार दिए। इप्सिता के चेहरे के सामने अभिमन्यु का चेहरा जैसे ही आया, इप्सिता की दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गईं। इप्सिता दो कदम पीछे हटी और वो बेकरी से वापस बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी।
तभी अभिमन्यु तेज कदमों से आगे आया और इप्सिता के सामने रुकते हुए बोला, एक मिनट रुकिए, हमें आपसे बात करनी है। अच्छा हुआ आपने खुद ही हमें पहचान लिया, नहीं तो हम इतनी देर से आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इप्सिता ने अभिमन्यु की इस बात को अनसुना किया। वो साइट होकर उस बेकरी से बाहर जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, एक बार इप्सिता, प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। इप्सिता ने चिढ़ते हुए कहा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही हमें आपकी कोई बात सुननी है। इतना बोलकर इप्सिता वहां से जाने लगी। तभी वो मैनेजर वहां पर आते हुए बोला, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्सिता ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिमन्यु ने उस मैनेजर की बात का ध्यान ही नहीं दिया। इप्सिता से कहा, एक बार मेरी बात सुन लो। तभी उस मैनेजर ने कहा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम। वो बोल ही रहा था कि इप्सिता ने तेज आवाज में कहा, नहीं मैं इन्हें नहीं जानती। इतना बोलकर इप्सिता अभिमन्यु को घूरते हुए देखने लगी। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता के मुंह से ये बात सुनी, वो बिल्कुल दंग रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा आपने, आप हमें नहीं जानती? इप्सिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से सीधे बाहर निकल आई। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई नो इप्सिता, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज भी है, लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी बात बोलना ये सही नहीं है। आप ऐसे कैसे मना कर सकती हैं कि आप हमें नहीं जानती? इतना बोलकर अभिमन्यु सीधे इप्सिता के पीछे पीछे भागा। इप्सिता तुरंत वहां से आगे बढ़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभिमन्यु भागते हुए उसके पास आ रहा था। इप्सिता ने अपने चलने की स्पीड तेज कर दी। वो तेज कदमों से चलकर आई। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला। वो कार के अंदर आकर बैठ गई। अभिमन्यु ने उसकी कार का दरवाजा बंद होने से पहले ही अपना हाथ कार के दरवाजे के बीच लगाकर उसे रोकते हुए कहा, इप्सिता प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आपको अगर हमें सजा देनी है तो आप हमें सजा दे दीजिएगा, हम जानते हैं हम आपके गुनहगार हैं, हम आपसे पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु को घूरते हुए देखकर कहा, अपना हाथ हटाइए। अभिमन्यु ने कार का दरवाजा बंद होने से रोकने के लिए एकदम कसकर पकड़ा हुआ था। इप्सिता भी उसकी वजह से कार का दरवाजा बंद नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने एकदम चिढ़ते हुए कहा, आपको चोट लग जाएगी, हटाइए अपना हाथ क्रमशः।